ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरोश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीव्यास ततो जाय मदिरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी।
जय ग्रंथराशुन भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय छे, देवता और असुरों द्वारा रचे गए इस श्लोक क्या लिखा है उसमें 35 में और 33 और 34 इसके पार्ट नहीं है। तो 33 या 34 इसके कोई पार्ट नहीं है, इसलिए 35 पढ़ेंगे। उससे पहले हम 33 और 34 पढ़ेंगे, जब 35 आएंगे तो आप सब फिर दोहराएंगे। ततस्ते मंदरं गिरी अतापि तदुर्मदः नन्दतौदहिनी निन्युः शक्त्या परिग्रह भवः। तो हे शत्रु के दंड देने वाले महाराज परीक्षित, तब देवताओं तथा असुर ने परस्पर संधि कर ली और उन्होंने इंद्र द्वारा प्रस्तावित अमृत उत्पन्न करने की योजना की बड़ी उद्यम पूर्वक कार्यान्वित करने की व्यवस्था की। तत्पश्चात देवताओं तथा अन्यत्र शक्ति अत्यंत शक्तिशाली एवं लंबी लंबी बलशाली भुजाओं वाले असुरों ने अत्यंत बलपूर्वक मंदर पर्वत के गिरी उखाड़ा और जोर से निनाद करने के लिए उसे खीर सागर की ओर ले चले। दूरभार द्रुह श्रांत शक्र वैर चनादय अपारयंतस्त बौढ़ विवशा बिजहुपति। विशाल पर्वत को दूर तक उठाकर ले जाने के कारण राजा इंद्र, महाराज बलि तथा अन्य सारे देवता एवं असुर थक गए। पर्वत को ले जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने उसे रास्ते में छोड़ दिया। तो 35 लिखा है आपके इसमें, तो आप दोहराएंगे हमारे पीछे। हरे कृष्ण। नीपत संगिरिस्तत्र बहुन्मर्दानवान् चूर्णयामास महता भारेण कनकाचलः। नीपतस्तगिरिस्तत्र बहुन्मर्दायन्वान्
चतुर्नयमास महता भारिना कनकाचल नीपतंस्नागिरिस्तत्र बहुन्मारदयानवन् चूर्णयमास महता भारिना कनकाचल
माताएं शब्द अनुवाद निपतन गिरते हुए सह उस गिरिः पर्वत ने तत्र वहां बहुन अनेक अमर दानवान देवताओं तथा दानव को चूर्णयाम आस चूर्ण कर डाला महता भारी भारणा बज से कनका चला सोने का पर्वत जिसे मंदर कहते हैं। अनुवाद भावार्थ शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की तो यह पर्वत जो मंदर के नाम से विख्यात था अत्यंत भारी था तथा सोने का बना था। वहीं गिर पड़ा और उससे अनेक देवता तथा असुर कुचल गए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद कहते हैं कि स्वभाव से सोना पत्थर से भारी होता है, क्योंकि मंदर पर्वत सोना का बना था अतएव वह पत्थर से भारी था। फलतः देवता तथा असुर उसे क्षीर सागर तक ठीक से नहीं ले जा सके। ये प्रभुपाद की तात्पर्य है इसमें, और आगे पढ़ें क्या कि उसमें चर्चा करें, वही पे चर्चा कर आगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारसतिदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत हम आभारी हैं आप सबके कि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम आप सबके साथ में इसका रसास्वादन करने के लिए सुजग दिए हैं आप लोग। इसलिए विशेष करके वरिष्ठ प्रभु जी, सुरदास प्रभु और अन्य भक्तगण हैं। तो वास्तविक यह कहा गया कि श्रीमद् भागवतम जो है एक जो भगवान की भक्त तथा वैष्णव के बीच में इसको आलोचना किया जाए तो इसका फल वास्तविक बहुत कुछ रुचिकर होता है। नहीं तो भागवतों को भी बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं अपने बीच में, जो कि भगवान की और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु का भक्त नहीं है, लेकिन उन लोग इसका वास्तविक जो राष्ट्र है उसको आस्वादन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग वैष्णव के बीच में इसका रस आसाधन करने के लिए। तो ये अध्याय आप लोग पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला इस अध्याय। तो ये देवता तथा असुरों के द्वारा शादी की घोषणा, जैसे हम लोग देते हैं जैसे कोई नेगेटिव और पॉजिटिव टाइप का ना, या जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, ये कभी एक साथ नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ विशेष करके हम लोग देख रहे हैं कि देवता और असुर इनका बीच में शादी हो रहा है। तब इसकी पहला अध्याय में आप लोग पढ़ रहे थे कि देवता जब भगवान की शरण में गए, उनकी स्तुति किए और भगवान ने स्वयं प्रकट हुए उनके सामने, तो भगवान आके उनको बोले कि वास्तविक आप एक काम कीजिए, आप दोनों शादी कीजिए देवता और असुर के साथ। भगवान ने ये नहीं कहा वहां पे, जैसे हम लोग अभी जन्माष्टमी पालन कर रहे थे, जब वही देवता और ब्रह्मा जी पृथ्वी माता के साथ भगवान की प्रार्थना की किरदक साई विष्णु को, तो वहां भगवान ने बोले ठीक है हम आ रहे हैं अवतार लेने के लिए और आप लोग सभी जाइए। यहां भगवान ने नहीं कहा है कि भगवान ने विचार नहीं किया ठीक है अभी देवता लोग ये दिक्कत कर रहे हैं तो उनको सीधा, सॉरी असुर लोग इतना ये कर रहे हैं तो असुर लोग को सीधा वहीं पे जाके मार देंगे। भगवान चाहते तो कुछ भी कर सकते थे ना, इसलिए तो भगवान है ना, अश्वमेध भगवान के नाम, उनके कोई बोलने के लिए कोई चीज नहीं पड़ता है, भगवान जो चाहते हैं अपने कर सकते हैं। लेकिन भगवान ये कि विचित्र लीला करने के लिए चाहते थे। यहाँ सुंदर ये पंक्ति में लिखे हैं वहां पे कि वास्तविक ये करने का इच्छा था भगवान की कि ताकि हम लोग जैसे लोग आएंगे बाद में, ताकि ये लीला को पढ़ सकते हम लोग भगवान के। नहीं तो भगवान वही चाहते तो कोई असुर वाले नहीं रहते हैं। अरे भगवान क्या करते, असुर से इंद्र पर ये लोग आगे छुड़ा के सब दे देते इंद्र को। नहीं, भगवान ने एक विशेष लीला रचना चाहते थे, क्योंकि जो समुद्र मंथन लीला आएगा अगले से, ताकि भक्त लोग उसको पढ़ें और इसका रसास्वादन करें और बाकी जान सकते, उनकी जानकारी हो सकता कि वास्तविक भगवान की जन्म कर्म चाहे दिव्यम और हमारा क्या होगा अंत में, और नैति पूर्ण जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हम लोग को बार बार ये संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा जब हम भगवान की जन्म कर्म को दिव्य जानेंगे। ये वास्तविक भगवान का इच्छा था और भगवान को इसी धरती में विशेष कर आने के लिए यही एक कारण है। वास्तविक दूसरे जो कारण हम लोग पढ़ रहे हैं शास्त्र में, वो वास्तविक मूल लक्ष्य नहीं है भगवान के कारण नहीं है ये धरती में आने के लिए। इनकी ये विशेष ये लक्ष्य है कि ताकि जो साधारण भौतिक बद्ध जीव हैं हम लोग, जो अति संसार में सड़ रहे हैं जो जीव, उन लोग कैसे ये संसार में फिर नहीं आए, ये वास्तविक भगवान के लक्ष्य है। नहीं तो भगवान वही, जब देवता लोग प्रार्थना किए ब्रह्मा जी आदि, तो भगवान वहीं पर कहते ठीक है असुर को अभी चलो उनको खत्म ही कर देंगे बस, कहानी खत्म, और कोई यही नहीं। तो भगवान क्यों ऐसा करने लगे? और भगवान भी ये देखना चाहते नहीं खाली बैठ बैठ के आपको ऐसे, ये नहीं होना चाहिए, आप लोग कुछ कर्म भी करना चाहिए ना, नहीं तो ऐसे आपको मिल जाएगा तो फिर वो फल को आप इतना ये नहीं देंगे। देवता लोग ऐसे प्रार्थना किया भगवान आते और असुर को मार देते हैं, तो देवता लोग को इतना ये नहीं पड़ता कि कष्ट करके जो फल आपको आगार करेंगे ना उसको थोड़ा मीठा लगेगा आपको ज्यादा। भगवान ये भी चाहते थे देवताओं द्वारा कुछ काम कराएं और असुरों के द्वारा भी। तो ये वास्तविक भगवान की विशेष लीला, ताकि हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ के उसमें हमारा वास्तविक उसमें फायदा है, भगवान की कोई फायदा नहीं है उसमें। भगवान तो कितने कष्ट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। और इसी अवतार में हम देखें ये बलि महाराज की कारण भगवान दो बार ये अवतार लिए, दो नहीं इसमें तो दो तीन बार, और वामन देव चार बार अवतार लिए भगवान यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बलि महाराज जी कारण। यहाँ पे हम लोग देखेंगे समुद्र मंथन लीला में भगवान वहां पे तीन दिन खुद अवतार लिए भगवान, नहीं भगवान खुद प्रकट हुए हरि के रूप में, और वही भगवान फिर क्या किए कच्छव के रूप में अवतार लिए भगवान ने, ये बलि महाराज के पीरियड में, क्योंकि वास्तविक बलि महाराज से तो विशेष संपर्क था भगवान का। क्योंकि यहाँ हम लोग देखे बलि महाराज के समय में यहाँ इंद्र के साथ बलि महाराज ने जय प्राप्त कर लिया था देवताओं लोग को, तो उनके लिए उनसे किसी छुड़ाएंगे तो भगवान ये व्यवस्था किए। भगवान ने इसलिए नहीं किया कि ऐसे व्यवस्था जैसे हिरण्यकेशु को मार दिए भगवान ने सीधा, ये बलि महाराज से ऐसे नहीं किए। भगवान बलि महाराज से ज्यादा ये किए, क्योंकि जब भगवान प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान के रूप में, तो उसी समय प्रहलाद महाराज के वरयाचना किए थे, अब तक जो मार लिया वास्ते तुम्हारे पिताजी को मार दिया, कि अगले जो आएंगे पीढ़ी ना उनको नहीं मारूंगा। तो भगवान इसलिए बलि महाराज को नहीं मारे। बलि महाराज से हम लोग देखे वामन देव अवतार में भगवान क्या किए, छल से बट्टू वामन रूप में भगवान क्या किया, आप हरण कर लीजिए, क्योंकि वो जैसे हरण कर लिया था भगवान ने ऐसे हरण कर लिए फिर उनकी स्वर्ग राज्य, और यहाँ भी ऐसे कर रहे भगवान। एवं कच्छक रूप में आएंगे भगवान, क्योंकि भगवान के वास्तव की लीला आस्वादन करने की और अपने भक्तों के साथ ये लीला आस्वादन करने के बहुत मजा है। भगवान को ऐसे नहीं है कि असुर मारने के लिए भगवान की वास्तविक इच्छा नहीं है, वास्तविक क्यों भगवान जो रहते हैं अपने गोलोक धाम में वहां कोई असुर नहीं रहते, विशेष करके वहां तो अपने ग्वाल वाले हैं और सुरभिका भी हैं और उनके गोपियां साथ हैं। भगवान ये करना चाहते, भगवान ये असुर पसुर मारना नहीं, क्योंकि वो आ जाते बीच में तो क्या करें भगवान, इसके खेल खेल तो हुए कोई ये कर देते। तो ये लीला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं वास्तविक की ये इसी अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि, और भगवान ने क्या कहे थे योजना दी है इनको भी कैसे करना है, क्योंकि देवता लोग हैं तो बहुत बुद्धिमान है लेकिन उनको भी पता नहीं चलता वास्तविक कैसे ये करना है जीतना है। भगवान इसलिए कहे मतलब स्मृति ज्ञान अपन मेरे से सब कुछ आता है, भगवान ही वास्तविक सब कुछ देते हैं, इनका बुद्धि भी अकल कोई काम नहीं करता देवताओं लोग का। भगवान कहते कि आप लोग ऐसे ऐसे कीजिए सर्प और चूहे की न्याय कीजिए, उन लोग को समझना चाहिए कि वास्तविक सर्प और चूहे क्या है, आप लोग से सब पढ़ चुके हैं ना सर्प और चूहे क्या है, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं आप लोग जो देवता लोग हैं आप लोग असुर के द्वारा बहुत बड़े काम कराइए लेकिन फल आप लोग भोगिए, जो उसका फल, क्योंकि जो असुर लोग हैं वो अपने बल पर बहुत घमंड है ना, वो कभी नहीं मानते कि हम लोग कमजोर हैं। भगवान कहते हैं कि ठीक है इनके जो बलपन जो बहुत सारे बलशाली अपने को मानते हैं उनकी बल को ऐसे अच्छे काम के लिए उपयोग कीजिए, लेकिन उसके जो बल का जो नतीजा मिलेगा फल स्वरूप, लेकिन वो देवता लोग आप लोग लीजिए। इसलिए भौतिक जगत में भगवान ये व्यवस्था किए हैं। जय श्री श्री राधा रास बिहारी की, जय सीताराम लखन। इसी जगत में भगवान ऐसे किए, जो लोग बहुत बड़ाशाली अपने को मानते हैं, वो लोग जो परिश्रम है उनकी वृथा ही जाता है बहुत, उनके परिश्रम का फल वैसे जो बुद्धिमान लोग वो लोग पाते हैं। इस संसार में आप देखिए भी ऐसे है ना, जो लोग बहुत बड़ाशाली है इस संसार में, बहुत ये करते हैं, मजदूरी भारी उठाते हैं, लेकिन वो जानते नहीं वास्तविक की बहुत अनफॉर्चुनेटली वास्तविक वो क्यों करते हैं फल। इसमें बहुत अच्छा शिक्षा मिलता है भगवान की ये लीला से कि भारी बोझ क्यों उठाने के क्या कारण है। वो उनका मालूम नहीं कि वास्तविक बोझ उठाने के एक ये नहीं। इसलिए हम लोग देखे कि भगवान बलराम की लीला में जो धनुकासुर को वध किया, गधे को भगवान ने क्यों वध किया, क्योंकि इस संसार में हम लोग प्राय सभी गधे की तरह काम कर रहे हैं। हम लोग को ये मालूम नहीं, जैसे गधे की मेंटालिटी जैसे होता है ना, गधे की मेंटालिटी क्या है मालूम है ना आप सबको, क्या मालूम है, क्योंकि गधे का ये मेंटालिटी, हम बोझ नहीं उठाएंगे तो हमको खाना नहीं मिलेगा, ये गधे का मेंटालिटी है। और इसी संसार में प्राय 99% लोग का वही है कि इच्छा ये है कि हम लोग भारी काम नहीं है, सुबह से शाम तक भाग दौड़ नहीं करेंगे तो हमको रोटी नहीं मिलेगा। तो यही मेंटालिटी के लिए भगवान ने क्या बलराम जी आके इनको बध किए। और विशेष करके ये हमारे भक्ति मार्ग में बहुत बड़े शिक्षा है कि भगवत भक्ति में हम लोग ऐसे गधे की तरह बहुत जैसे भाग दौड़ करते तो गुरु जो कि बलराम के रूप की वो आके हमको शिक्षा देते हैं। वास्तविक इतना भारी ये काम करने का जरूरत नहीं है इस संसार में, क्योंकि भारी काम करने की, क्योंकि भारी काम करने से क्या मिले फल मिलेगा, जबकि वो थोड़ा सा ही करने से उतना ही फल मिलेगा। हम लोग सोच रहे हैं कि भारी काम करने से हमको ज्यादा मिलेगा और हमको सुख मिलेगा ज्यादा, इसलिए करते हैं ना, जबकि गधे के लिए घास पर्याप्त है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं हम पूरा बोझ नहीं उठाएंगे तो हमारा खाना नहीं मिलेगा। तो ये वास्तविक ये असुर लोग का मेंटालिटी यही है, ऐसे ही है, क्योंकि उन लोग का हमेशा भारी काम करने के लिए, अरे ये अपने का बल को ये करने के लिए बहुत उत्सुकता है वो लोग दिखाने के लिए। तो भगवान बोले कि इनको ठीक है, इनको काम कराने दीजिए अभी। ऐसे भगवान ने लीला किए हैं, इससे ही जो समुद्र मंथन का लीला आएगा वास्तविक ज्यादा ही ये असुर लोग ही समुद्र मंथन में ये लिए हिस्सा लिए, और भगवान जानबूझकर उनको भी सब व्यवस्था करी किए हैं। और देवता लोग को बोले कि तुम लोग ने कुछ नहीं, ये नहीं करना, अपने डिमांड कभी ये नहीं करना, पहले उनको डिमांड जो है वो फुलफिल करने दीजिए, हम ये चाहते वो चाहते। असुर लोग हमेशा ऐसे चाहते हैं ना कि हमारा इच्छा पूर्ण हो जाए, हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए, लेकिन जो देवता लोग होते हैं भक्त वैष्णव लोग होते हैं वो ऐसे नहीं कहते कि हमको ये चाहिए, नहीं, उनको मिलता है लेकिन वो उनका दिमाग में क्या है कि नहीं भगवान आप जब चाहें हमको ऐसे प्राप्त हो, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग है असुर लोग कि नहीं हमको ये चाहिए। इसलिए जो असुर मेंटालिटी और देवता मेंटालिटी इसमें पार्थक्य हुई है, इसलिए कभी कभी हमारे भक्तों के बीच में भी हम लोग कभी कभी ऐसे टाइप का हो जाता है, हमको ये चाहिए वो चाहिए भक्ति मार्ग में आने के लिए। भगवान असली वास्तविक श्रीमद भागवत में हर पन्ना में वही शिक्षा मिलता है। वास्तविक हम लोग हर एक के पेज में हम लोग देखेंगे हर एक श्लोक में कि कैसे शिक्षा मिलता है हमारे भक्ति मार्ग में, विशेष करके हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। कोई इसको पढ़ सकता है, ऐसे बहुत सारे कथाकार लोग जो पढ़ देते हैं ये असुर और देवता लोग, इसमें क्या इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने बीच में संबंध कर लिए उसमें क्या ज्यादा सीखने के लिए है, लेकिन इसमें बहुत सारे सीखे है हमारा भक्ति मार्ग में, हम लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि इसमें हम लोग को एक बहुत अच्छा शिक्षा मिलता है कि देवता लोग का कैसा मेंटालिटी है और असुर ये जो असुर लोग कैसा मेंटालिटी है। देवता लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग कुछ ज्यादा भोग मिले, हमको ये चाहिए, आई वांट दिस, लेकिन उसके विपरीत में जो देवता हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उसे तो नहीं, जो भगवान आपकी कृपा से जो मिलेगा वो बस वही ठीक है। तो इसलिए भगवान ने उनको शिक्षा दी है पहले से, आप लोग कभी जब समुद्र मंथन में कुछ मिलेगा तो इसलिए पहले आपका उसमें डिमांड जो ये मत रखिए, दाबी आप उपस्थापन मत कीजिए पहले, लेकिन आपको जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। असुर लोग पहले दाबी करेंगे ठीक है आप लोग ले लीजिए, आप छोड़ देंगे। ये होता है जो ब्रॉड मेंटेलिटी वास्तविक, इसमें बहुत शिक्षा मिलता है कि जो भक्त होते हैं वास्तविक उदार हृदय वाले होते हैं उसमें, और भगवान उनको शिक्षा देते। वास्तविक देवता लोग भी ये बुद्धि नहीं है वास्तविक, नहीं तो देवता लोग जब भी कोई निकलते तो देवता लोग भी अपने मन में बहुत ये हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन पहले भगवान ने क्या किया ये शिक्षा दिया इसलिए वो लोग चुपचाप बैठे, नहीं तो उनका मन में बहुत होता था नहीं यार समुद्र से ये निकल रहे हम लोग नहीं चाहते हम लोग नहीं, ये भगवान की शिक्षा, इसलिए ये हमारे भक्ति मार्ग है ये बहुत बड़ा, क्योंकि साधु गुरु वैष्णव लोग आके हमको क्या कहते हैं ये दिया पहले कि ये गलत काम करने से ये होगा उनका नतीजा, क्योंकि कि वास्तविक हम लोग को जानकारी नहीं है वास्तविक क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए साधु वैष्णव जो महात्मा लोग आते हैं वो हमको ये देते हैं कि वास्तविक ये करने से आपको अच्छा है ये करने से बुरा है, और इसके फल ये मिलेगा इसका फल वो मिलेगा। इसलिए हम लोग को थोड़ी बहुत ज्ञान है नहीं आ रहे इसमें डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कोई चीज हम लोग ये करते हैं कोई चीज हम लोग ग्रहण करना चाहते हैं कि वो उपभोग करने के लिए इच्छा है, उससे पहले हमको थोड़ा रोक आ जाते हैं, अरे नहीं भागवत में ये पढ़ रहे थे कि साधु गुरु महात्मा लोग के शास्त्र में ये दिए गए नहीं ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, ये बहुत बड़ा अच्छे ये बड़े उपदेश है वहां से हम लोग को मिल रहा है हमको, कि वास्तविक उसी के माध्यम से हम लोग क्या कहते हैं कि बच जाते हैं कोई ये इंद्रभोग चीज से, लेकिन असुर लोग तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मिल रहा है वास्तव उसको भोग करना है। तो ये भी भगवान से ये शिक्षा मिलता है इसी अध्याय में कि वास्तविक भगवान क्यों उनको शिक्षा दिए, क्योंकि भगवान जानते थे कि देवताओं लोग के लिए वास्तविक जो लोग भक्ति आचरण कर रहे हैं उनके लिए हर चीज वास्तविक की जरूरी नहीं है, उनकी जिंदगी के लिए जो बचने के लिए जरूरी है जिंदगी रखने के लिए वो भगवान अवश्य देंगे। और देवता लोग को यहाँ पे भगवान ने क्या कि अमर पाने के लिए अमृत पिलाए भगवान ने, जो कि वास्तविक ऐसे नहीं है कि अमृत पीने से कोई अमर हो जाएगा, लेकिन भगवान ने ऐसे सोचा कि नहीं ये लोग इतने देवताओं के ससुर के साथ इतने लड़कर बहुत ये हो गए नहीं इनको भी थोड़ा कुछ अमृत पान करने दीजिए, भगवान ने यह विचार किया था। और उनको क्या किए ऐसे ऐसे करके भगवान क्या किए बहुत सारे सलाह दिए, इससे पहले हम लोग देख रहे हैं तो तब जाके हम लोग ये अभी देख रहे हैं कि देवता और असुर लोग अपने बीच में संधि बनाए। देवता लोग जब पहले गए असुर लोग के पास कोई बिना हथियार से, तो असुर लोग सोचे पहले तो वो लोग सोचे कि इन लोगों को यहीं से मार देना चाहिए, लेकिन असुर का बीच में भी बड़ी महाराज जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ असुर यहाँ पे कहा गया, कि भगवान के भक्त होने के नाते बड़ी महाराज ने सोचे नहीं ये देवता लोग बिना अस्त्र से आते हैं तो कोई इनके कोई कारण होगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया उनसे बात करने के लिए ये की व्यवस्था की है, नहीं तो उनके जो साथी लोग थे वो तो पहले लगते थे कि जब इंद्रल आदि अनेक देवता लोग उनका आए उनको पहले मार देना चाहिए, ये अच्छी सुझाव है ना उनको कोई अस्त्र से। तो वास्तविक ये भक्त मेंटालिटी यार असुर मेंटालिटी उसमें भी फर्क हम लोग देखते हैं, वास्तविक की असुर का बीच में रहते हुए भी बड़ी महाराज कैसे उनकी कभी कभी वो भाव आ जाते हैं, क्योंकि असुर मेंटालिटी इसमें रहते हैं उनकी संग में रहते हैं तो, लेकिन हमेशा हम लोग देखते हैं कि बड़ी महाराज के जो विचार हैं यहाँ पे देखें कि वास्तविक बहुत सराहनीय की चीज है, हम लोग शिक्षा करने की चीज है, अपने नीति पद से कभी हटे नहीं बड़ी महाराज, इसलिए भगवान ने इतना कृपा किए बड़ी महाराज के प्रति जितने कृपा प्रहलाद महाराज नहीं किए। प्रहलाद महाराज के लिए भगवान बॉडीगार्ड होकर खड़ा नहीं हुए थे, बड़ी महाराज के लिए बॉडीगार्ड होकर बन गए भगवान, प्रहलाद महाराज तो स्तुति किया, बहुत कष्ट किए थे प्रहलाद महाराज, हम लोग देखे कितने कष्ट किए थे प्रहलाद महाराज अपने भक्ति को ये करने के लिए, भगवान से भक्ति करना भाई यही उनकी गलती था ना, कितना कष्ट सहे प्रहलाद महाराज, लेकिन बड़े महाराज हम देख ले इतना कष्ट नहीं सहे, लेकिन वो भक्ति उनको प्राप्त हो गया। इससे बहुत अच्छा शिक्षा हम लोग मिलता है वास्तविक भगवान की भक्ति की कृपा जो है ना, अपने बल पर हम कितने भक्ति करेंगे, हम करेंगे है भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन जब वैष्णव लोग का कृपा हो जाए, भगवान के भक्त का कृपा हो जाए, तो फिर भगवान की कृपा पाने के लिए कोई ये नहीं पड़ता है। इसलिए बड़े महाराज को वो प्राप्त हो गया था, जब हम देखे बामन अवतार में जब भगवान आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बड़े महाराज की जब ये देवता लोग आते हैं, तो फिर बड़े महाराज उनको ये नहीं करते, उनको आक्रमण करने के लिए उनको उनका जो कमांडर इन चीफ ये वगैरह सब थे उनको आदेश नहीं दिए, क्योंकि भक्त होने के कारण ये लक्षण है भक्तों के। इन चाणक्य नीति में ऐसे कहा गया कि जो शत्रु कभी आ जाए अपने द्वार में, तो उनको शत्रु रूप में नहीं देखना चाहिए, उनको मित्र रूप में देखना चाहना चाहिए। तो ये हम लोग को शिक्षा मिलता है वास्तविक हम लोग भक्ति होने के भक्ति मार्ग में कैसे हम लोग को व्यवहार करना चाहिए अपने भक्त भक्तों के बीच में, जैसे हमारा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में दिया गया है ना कि कैसे हम लोग को व्यवहार करना चाहिए अपने बीच बीच में। तो बाद में जब बड़ी महाराज और इंद्र का बीच में संधि हुआ, तो सभी मानने लगे कि ठीक है, तब हम सब इंद्र मंथन करने के लिए चलिए मंदार पर्वत को उठा के लेकर आएंगे। तो मंदराचल जो पर्वत है वो पूरे सोने में बना हुआ वो पर्वत, तो हम लोग का भी अपने इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम लोग आजकल नहीं देखे कोई पर्वत सोने में बना हुआ करके, और हमारा दिमाग भी इतना तक नहीं जा पाता है कभी, हम लोग देखे आज तक सब जो भी देखे सब पत्थर में बना हुआ, जो भी सोने का खादान कहाँ मिलता है कोई कोई पहाड़ में तो वो पत्थर ही दिखता है, उसके अंदर फिर बहुत सारे उसको रिफाइनरी प्रोसेस में जाना पड़ता है, वैसे सोने का ऐसे 24 कैरेट गोल्ड सोने का कोई पहाड़ नहीं देखा हमारे सामने। तो हम लोग इसलिए कभी कभी ये पुराण को आजकल जो बड़े बड़े मानी जानी लोग हैं ना वो लोग कभी मिथोलॉजिकल बोलते हैं, अरे ये कहानी है इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे श्रीमद भागवत में उसका ये मिलता है वास्तविक कि इसी संसार में से पत्थर का पहाड़ बनता तो सोने का क्यों नहीं बन सकता, ये साधारण चीज उनको समझ में नहीं आता है, हमारा दुर्भाग्य से शायद पत्थर ही है ये, और सोने का पहाड़ क्यों नहीं होता इस संसार में। तो प्रभुपाद इनकी तात्पर्य में कहा है कि ये सोने का पहाड़ मतलब पत्थर से सोने भारी है, इसलिए ये सोने का पहाड़ इतना भारी था, और सारे देवता और असुर आप लोग सोचिए देवता लोग कितने हैं, देवता इस हमारा इस संसार में 33 कोटि देवता बोलते हैं ना, 33 कोटि देवता है मतलब ये पोस्ट है इतने, और उनके अंडर में कई सारे हैं ना कर्मचारी है ना वो लोग भी है ना, और उनके सन्य सामंत भी होंगे ना, खाली देवता ऐसे तो नहीं होंगे, और देवता लोग हम लोग खाली ऐसे देवता नहीं, तो कितने सारे देवता होंगे, और असुर तो सीधे उसको गणना का बाहर है, ये लोग इतने सारे गए और पर्वत को उखाड़े, और उखाड़े तो उधर वहीं पे क्या है अधे कुचल के मर गए, और ये लोग सोच रहे थे कि हम पूरे इतने शक्तिशाली हैं, भगवान की शक्ति पर कोई भरोसा नहीं है लोग का, ये लोग सोचते कि भगवान वास्तविक ये व्यवस्था इसलिए की है कि सभी को पता चले कि वास्तविक वो कितने कमजोर है इस संसार में। इस संसार में हम लोग आजकल देखते हैं कि ओलंपिक गेम आप लोग देखते होंगे ना, कोई 365 400 किलो वेट लिफ्टिंग में करते, वो लोग सोचते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड के शक्तिशाली आदमी हैं, लेकिन भगवान की शक्ति के सामने कुछ नहीं है, अपने हाथ तक भी 1 घंटा तक उठा के नहीं रख सकते, लेकिन भगवान ने क्या किए 7 दिन तक पर्वत उठा के रखे हैं। वास्तविक भगवान से बड़े शक्तिशाली नहीं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि देवता और असुर इतने देखिए शक्तिशाली हैं, तो अपने बीच में लड़ाई करके कितने सारे ये किए, जो हम लोग देखेंगे जब पढ़ते हैं देवता और असुर जब लड़ाई होता है तो कितने भारी लड़ाई होता है, और अपने बल को कितने सारे प्रयोग करते हैं, कितने बलशाली उसमें बनने किए गए, लेकिन यहां पे गए देखिए मंदिर चलो उठाने के लिए और उसको उखाड़े उखाड़े तो लेके नहीं आ पाए। और आगे हम लोग देखेंगे भगवान ने क्या किया, जैसे छतरी को आज उठाते हैं ना, जैसे मशरूम को उठाते हैं बच्चे के लोग, भगवान ने ऐसे पर्वत को ऐसे उठा लिया और अपने गरुड़ पुष्ट में रख दिए। खाली पत्थर ये पर्वत को नहीं रखे, भगवान खुद बैठे और पर्वत को रखे और देवता और असुर को बोले कि तुम भी बैठ जाओ उसमें गरुड़ के ऊपर, क्योंकि तुम लोग यहां जाते जाते और टाइम लग जाएगा वहां समुद्र के पास, अपने दौड़ के नहीं आ सकते इतने जोर। तो वास्तविक ये भगवान के सर्वशक्तिमान, इसमें हम लोग को ये मिलता है शिक्षा की वास्तविक भगवान के शक्ति के आगे कुछ किसके शक्ति काम नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में तो बड़म बड़ा बतामा हम, क्योंकि सोर्स ऑफ करेज जो भी कि हम लोग को एनर्जी बोलते हैं आजकल, ये भगवान से आता है, कोई वैज्ञानिक इसको उद्भावन नहीं करते हैं आजकल सोर्स ऑफ एनर्जी। आजकल हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं ना कि जैसे हाइड्रोपावर एनर्जी बोलते हैं इसको, नहीं जल से आता है शक्ति कि नहीं, तो कोयले से आता है आजकल शक्ति कि नहीं, तो आजकल क्या होता है मॉडर्न डेवलपमेंट में हम लोग इसमें बोलते हैं कि सौर शक्ति व्यवहार करते हैं, लेकिन वास्तव की सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द कृष्णा, भगवान कृष्ण से सब प्रकार का शक्ति आता है। तो इसलिए तो हिरण्यकश्यप बहुत हैरान हो गया ना जब प्रहलाद महाराज ये बात बताए, तो हिरण्यकश्यप ने बहुत आश्चर्य हुआ कि प्रहलाद महाराज इतने छोटा बच्चे हैं, 7 साल के बालक हैं, वो लोग देख रहे कि इसी सारे संसार में देवता लोग और सारे दिक्पाल और जितने सारे देवता हैं, मेरे खाली देखने से, मैं जब उनको देखना चाहता हूं तो वो लोग डर से मर जाते हैं, और ये छोटा सा 7 साल का बालक है, हम इतने इसको मारने के लिए इतने सारे व्यवस्था कर रहे हैं फिर भी नहीं डर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है इसका, तो मैं समझ इसके ये कौन से किसकी बल पे बलवान है। तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर उत्तर दिए थे वहां पे, प्रहलाद महाराज बोले थे कि हे पिता, खाली मैं नहीं हूं और आप जिसके बार बलवान आजकल कह रहे हैं ना कि आप बहुत बलशाली है, पूरे पृथ्वी का आप ही बलवान है, मतलब कि सभी का बल का एकमात्र आधार है भगवान विष्णु। तो ये बहुत बड़े हैरान की बात था हिरण्य को, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता था कि वास्तविक कोई उनके परे और कोई बलवान होगा क्या इस संसार में, क्योंकि उनको मालूम था कि संसार में खाली 2 ही आदमी उनसे बलवान थे, भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान क्या पाया था इसलिए सोच रहा था कि ये उनसे बलवान है, नहीं तो ब्रह्मा जी को भी खातिरी करने वाला नहीं था ये हिरण्यकश्यप, अपने बल का ऊपर इतना उनका घमंड था। तो इस संसार में हम लोग ऐसे ही, इस संसार में हमारा घमंड जो है ये अपने खुद का ताकत का ऊपर इतने सारे हमारा घमंड है, वास्तविक देखते हैं तो हमारा ये देखिए भगवान वो बल हमारा विड्रॉ कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ भी उठाने के लिए ये नहीं हो, जहां बैठे हैं भगवान विड्रॉ कर लेंगे अपना बल, तो यहां उठने के लिए भी ताकत नहीं रहेगा हमारा, लेकिन हम लोग क्या करते इतने घमंड करते हैं। तो यहां पे ये शिक्षा मिलता है इसमें, और देवता लोग भी कोई कम ही बलशाली नहीं थे, हम लोग देखे हैं इंद्र आदि जितने सारे देवता हैं, तो ये लोग भी अपने बल पर बहुत घमंड था इन लोगों का। भगवान कहते करते हैं कि अपने लीला में ना सबका घमंड को चूर्ण करते हैं ताकि ये लोग भक्ति में आ सकते हैं। एक तो असुर लोग तो दुष्ट बुद्धि हैं, उनकी तो घमंड ये करते हैं, लेकिन जो भक्त लोग कहते हैं उनकी भी घमंड ऐसे कभी कभी आ जाते हैं भक्ति मार्ग में, तो उनको भी भगवान ये कर लेते हैं। जो देवता लोग पहले भी बहुत बलशाली करते मानते थे अपनों को, तो यहां पर देखे तो पर्वत कुछ नहीं उठा पा रहे, और जिसको भी भगवान क्या किया खाली एक हाथ में उसे उठा के रख दिया अपने गरुड़ पुष्प में। तो वहां पे हमको ये मिलता है कि वास्तविक ही जब भगवान की शरण में आ जाते हैं तो वही पर्वत, देखिए हम लोग भगवान राम की लीला में रामायण में देखे हैं, तो वही पर्वत को क्या किए हनुमान जी उसको इतने साल से उठा के ले आए, क्योंकि भगवान की कृपा शक्ति में, जबकि इतना भारी पर्वत था वो भी उसको अकेला उठा के ले आए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देवता और असुर देखिए इतने बलशाली होने के नाते भी वो पर्वत नहीं उठा पा रहे हैं, और जिसको भगवान की थोड़ी सी शक्ति से जो भगवान की पूर्ण शरणागति होते हैं वो इतने बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीखे कि कैसे भगवान का हम लोग शरणागति सीख लेना चाहिए, वास्तविक कैसे शरण में हम लोग लगाना चाहिए, ताकि हम लोग अपने घमंड का ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए इस संसार में। तो ताकि पर्वत, प्रभुपाद बताते हैं कि पर्वत सोने में बना था इसलिए बहुत भारी था, ये तो एक बहुत ये कैलकुलेशन है, क्योंकि प्रभुपाद समझाना चाहते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग अपने बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, हम लोग सोचेंगे कि नहीं ये पत्थर का होता तो ये बहुत हल्का होता, प्रभुपाद के नेचुरली पत्थर जो है भारी है सोने ऐसा सोने है जो सोना जो है पत्थर से भारी है, क्योंकि इसका डायमेंशन आ रहा है ये ज्यादा है। तो ये से जो लीला हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, इस लीला से हम लोग देख रहे हैं कि वास्तविक भगवान का कई सारे शिक्षा हमको मिलता है इस भागवतम के इस पन्ने में, ऐसे नहीं है कि ये कोई कहानी है, वास्तविक भगवान क्यों करना चाहते हैं ये करना चाहते हैं, और कोई कोई बोलते नहीं ये मिथोलॉजी है, ये कोई जैसे हम लोग कोई स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं ना, स्टोरी टेल आजकल पढ़ते हैं, ये कोई स्टोरी टेल ऐसे नहीं है, ये भगवान सचमुच ऐसे लीला करना चाहते हैं ताकि हम लोग उसको पढ़ें, और उसको क्या करें पढ़ने के बाद उसको अपने इसमें स्मरण करें, ताकि वो लोग वो क्या होगा हमारा जो अंतगत जो समय आएगा तब उसको स्मरण कर सकते हैं। जब भगवान ने अर्जुन को बोला कि नवमा अध्याय में हम लोग देखें भगवत गीता में भगवान कहे कि मनमना भव मत भक्त मज्जा जी माम नमस्कुर, आप मुझे स्मरण कीजिए ये कीजिए, तो अर्जुन ने बोला क्या क्या स्मरण करना है आपको, कैसे आपको स्मरण करूंगा मैं, अरे कोई गुण तो बताए आपका कुछ उसको हम स्मरण करेंगे, कोई लीला तो बताइए। तब जब अर्जुन ने पूछा भगवान ने क्या कहा, भगवान बोले कि हमारे जो गुण है हमारे जो लीला है हम खुद कोई मालूम नहीं है, मैं तुमको क्या बताऊं, कह दिया तुमको स्मरण करना है बस स्मरण करो। अर्जुन बोले नहीं अरे आदमी जो आएंगे ना पीछे बहुत ये करेंगे, ये लोग बोलेंगे क्या भगवान ने ऐसे ये किया, तो भगवान बोले कि जब हमको खुद को मालूम नहीं है कि हमारे क्या गुण है तो हम क्या बताएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा बताता हूं बस आपको। तो दसवां अध्याय में थोड़ा सा ही बताया भगवान ने अपने गुण का, नहीं कि मैं ऐसे हूं ऐसे हूं ऐसे हूं ऐसे हूं, ये थोड़ा सा केवल ये भौतिक जगत में जो कि श्रेष्ठ थी उसको ही बताया भगवान ने, भौतिक जगत का ऊपर नहीं गए भगवान ने। और बोलने के बाद भगवान ने बोले कि बस ये इस फ्रैक्शन है, ये बहुत छोटा सा जैसे समुद्र की बालू का एक रण है ना कण है ऐसे ही है बस, उसको समझ लो ये पूरा है बस, आप बाकी नहीं करना है। कि भगवान खुद कहते हैं कि भगवान की जो लीला है उनको गुण है, खुद भगवान जो कि अनंत रूप में आए और अनंत फण में अनंत मुख में अनंत काल से उनका लीला वर्णन नहीं कर पाते तो साधारण भी क्या वर्णन करेगा, इसलिए भगवान खुद कहते हैं कि नहीं हमारा गुण जो हमको खुद मालूम नहीं है, अनंत काल से स्वयं भगवान अनंत देव भगवान की गुण लीला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो उनका कोई काम नहीं किया दूसरे है? नहीं कि वास्तविक भगवान के गुणगान करने से भगवान की लीला करने से ये हमारा लिए ही फायदा है। तो यही श्रीमद् भागवतम का शिक्षा दिए गए पहले से, जब भागवतम पहले शुरू हुआ सुखदेव गोस्वामी से तो वही शिक्षा पहले दिए कि परीक्षित महाराज को तो बहुत सारे सलाह मिल रहा था, यज्ञ करने का तपस्या करने का कोई उपवास रहिए दान धर्म कीजिए वो कीजिए, लेकिन वो नहीं किए। सुखदेव गोस्वामी ये सलाह नहीं दिए भागवतम में पहले, सुखदेव गोस्वामी कहे नहीं आप भगवान के लीला गुण ये सब श्रवण कीजिए, ताकि क्या होगा वो श्रवण करने से ही हमको क्या होगा तो आके आएगा दिमाग में उसे स्मरण करने के लिए, जब श्रवण नहीं करेंगे तो श्रवण कहां से आएगा, हम लोग कचरा चीज श्रवण करेंगे इसी संसार का चीज तो स्मरण वही आएगा ना, और बोलना भी वही आएगा, जो सुनेंगे वही तो बोलेंगे ना। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवत में भगवान के हर पन्ने में हम लोग देखेंगे भगवान की हर लीला का वर्णन किए गए यहाँ पे, और भगवान क्या कि जानबूझकर लीला कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि जो चीज बस एक मिनट में एक सेकंड में खत्म होने वाला था भगवान इसको देखिए अभी ये स्कंध है, अरे पांच छह अध्याय उसको बढ़ाएंगे भगवान ने। वो करने का मतलब ये है कि हम लोग के वास्तविक कल्याण के लिए, इसमें भगवान का कोई कल्याण नहीं होता है। हम लोग सोचते अरे भगवान के बड़पन दिखाने के लिए भगवान शायद ऐसा कर दिए हैं, नहीं, और भगवान तो है ही वास्तविक बड़पन उनका है, ताकि हमारा कल्याण के लिए भगवान ऐसे व्यवस्था किए। एक तो देवता और जो असुर हैं उनके कल्याण के लिए किए भगवान ने ये सब व्यवस्था, क्योंकि असुर आज देवता जब ये लोग ये करेंगे लड़ेंगे ऐसा ये समुद्र का मंथन करेंगे तब उसमें कुछ अच्छा चीज आएगा, तब की जो उनकी ये होगा तो बाद में देवता लोग को अमृत मिलेगा और असुर लोग युद्ध करेंगे वो मरेंगे तो फिर भी वो लोग जाएंगे भगवत धाम नहीं। तो ये सब भगवान की वास्तविक की जो लीला भगवान करते हैं, तो वास्तविक के सारण ये जो हम लोग के जो भौतिक जगत में जो पतित हुए जीव ले हमारा कल्याण के लिए भगवान कर रहे हैं ये लीला, नहीं तो भगवान को करने के लिए भगवान तो अपने धाम में इतना ये करते हैं, उनको ही संसार में कोई भोग करने के लिए और सुख करने के लिए कोई ये नहीं है कि भगवान आके ये करते हैं। देखिए भगवान ने क्या कि इसे अवतार में कच्छप रूप में लेंगे, कच्छप रूप कौन सा ऐसे सुंदर रूप है भगवान क्यों ले लिया है, नहीं भगवान हमारे लिए लीला की है ऐसे, ताकि हम लोग उसको पढ़ेंगे और पढ़ पढ़ के उसको स्मरण करेंगे और अंत में क्या होगा हमारा अंत नारायण स्मृति होगा और बाद में क्या होगा भगवान कहते कि फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा और हमेशा के लिए इस संसार से हमको छुटकारा मिलेगा। ये भगवान की इच्छा था ये लीला करने के लिए, नहीं तो और कोई इच्छा नहीं भगवान का। और इस संसार को भगवान इसलिए बार बार अवतार लेते हैं वास्तविक हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि भगवान कहते ना भगवद गीता कि मैं हूं वास्तविक सर्वाकांक्षी बंधु हूं तुम्हारा परम मित्र हूं। इस संसार में कोई और मित्र नहीं है भगवान जैसे, कि मित्र से हमेशा अपना मित्र का कल्याण चाहते हैं, भगवान से सुहृद है मतलब परम हितकांक्षी बंधु है, इसलिए भगवान नहीं चाहते कि हम लोग कोई ऐसे काम हो कि हम लोग के कल्याण ना हो। तो भगवान इसलिए आके संसार में ये लीला करते हैं, जो जिसे हम लोग अभी जन्माष्टमी है राधाष्टमी आएगा बड़राम जयंती और बामन जयंती इससे सब जो आ रहे हैं भगवान की विभिन्न आविर्भाव तिथि है, इसको हम लोग ये सोचना चाहिए कि जैसे हम लोग भागवत में अभी ये पढ़ रहे हैं ये समुद्र मंथन की जो लीला अभी शुरू होगा, तो ये लीला करने का भगवान का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे ऊपर विशेष कृपा भगवान करना चाहते हैं, कि विशेष करुणा भगवान का, कि भगवान चाहते हैं कि ये लोग जाके जाके तपस्या तो नहीं कर सकते, कहाँ करेंगे, हम लोग तपस्या कर सकते हैं क्या, ना उपवास कर सकते हैं, एक दिन कभी कभी फास्टिंग आ जाता है हम लोग का जो निर्जला एकादशी उसमें हम हैरान हो जाते हैं, हम लोग वो नहीं कर पाते, हम लोग कहाँ व्रत तपस्या करेंगे। भगवान बोले नहीं बस हमारा लीला श्रवण कीजिए उसको स्मरण कीजिए ताकि संसार में फिर मत आइए। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई प्रश्न है किसके मन में, कोई प्रश्न है नहीं तो कोई सुझाव है, और कुछ गलतियां तो उसे सुधार सकते भी कोई नहीं। है नहीं प्रश्न, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्ण, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, सांवेद भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।